Good evening, listeners, and welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today we'll also be taking calls from our listeners on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But do remember that we do not address company-specific queries. To connect with us, you can call us on 2331-4444. 2342-1050 and 2331-0464. And of course, do prefix the code 011. To navigate you through today's show, along with Amrish Saxena, I am Sarabjeet Kaur.
नमस्कार. आर्थिक खबरों के कार्यक्रम मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है. इस कार्यक्रम में हम आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार की खबरों पर चर्चा करेंगे. आज सोमवार है और प्रत्येक सोमवार की तरह आज भी हम आपके प्रश्नों को सीधे कार्यक्रम में शामिल करेंगे. सवाल पूछने के लिए आप हमें इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 2341-4444, 2342-1050 और हमारा तीसरा नंबर है 2331-0464. दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी डायल करें. लेकिन श्रोताओं, याद रखें कि हम किसी खास कंपनी या शेयर से जुड़े सवालों के जवाब आपको इस कार्यक्रम में नहीं दे पाएंगे. जब आप हमें कॉल करें तब अपने रेडियो सेट की आवाज धीमी रखें. आपके सवालों का जवाब देने के लिए जल्दी ही हमारे विशेषज्ञ आपके साथ जुड़ेंगे. और पहले हम लेते हैं आज की हेडलाइंस, जिसे लेकर मौजूद हैं सरबजीत कौर.
Benchmark domestic indices close week's first trading session with losses. Sensex dips 65 points. Nifty ends below 26,200. Most Asian stock markets end mixed. And global crude oil prices rise over 1%.
घरेलू शेयर बाजारों के सूचकांक सप्ताह के पहले कारोबारी सत्र में गिरावट के साथ बंद हुए. सेंसेक्स 65 अंक गिरा. निफ्टी 26,200 अंकों के नीचे बंद हुआ. अधिकांश एशियाई बाजारों में मिला जुला रुख रहा और कच्चे तेल के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में 1% से अधिक की तेजी दर्ज की गई.
And listeners, before we take you any further in the program, may we remind you, the views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
Aur aaj ki pehli khabar. घरेलू शेयर बाजारों के सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी आज मामूली गिरावट के साथ बंद हुए. दोनों ही सूचकांक अब तक के सर्वोच्च स्तर पर खुले थे, लेकिन बाद में वे अपनी तेजी बरकरार नहीं रख पाए. दिन में बाजारों में कारोबार एक निश्चित दायरे में चलता रहा, लेकिन बाजार बंद होने के समय सूचकांक नीचे लुढ़क गए. सेंसेक्स 65 अंक की गिरावट के साथ 85,642 अंकों पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 27 अंक गिरकर 26,176 अंकों पर आ गया. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक बाजार में मिला जुला रुख रहा. मिडकैप में 0.2% की गिरावट दर्ज की गई, जबकि स्मॉल कैप सूचकांक में मामूली बढ़त दिखाई दी.
Benchmark domestic equity indices, the Sensex and the Nifty, ended the session with slight losses today. Both indices opened at their record all-time highs but were unable to hold on to that momentum. After a range-bound day of trade, the market slipped into the red by the close. The Sensex fell 65 points to close at 85,642, while the Nifty dipped 27 points to settle at 26,176. However, the broader market indices at the Bombay Stock Exchange closed mixed. The mid-cap index lost 0.2%, while the small-cap index edged up marginally.
और सेंसेक्स में शामिल 30 में से 16 कंपनियों में तेजी देखी गई. बढ़त दर्ज करने वाली कंपनियों में टाटा मोटर्स की यात्री वाहन इकाई में 1.9% से अधिक की बढ़त दिखाई दी. मारुति और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड दोनों का शेयर लगभग 1.4% बढ़ा और कोटक बैंक के शेयर में 1.1% से अधिक की तेजी दर्ज की गई. गिरावट दर्ज करने वाली प्रमुख कंपनियों में बजाज फाइनेंस का शेयर 1.6% से अधिक गिरा, सन फार्मा का शेयर लगभग 1.3% और टेंट का शेयर लगभग 0.8% तक नीचे आ गया.
Across sectoral indices at the BSE, 12 out of 21 sectors ended with losses. Among the key decliners, realty slipped 1%, healthcare dipped over 0.6% and consumer durables decreased almost 0.6%. Among the top gainers, auto gained 0.8%, metal rose nearly 0.6% and focused IT added more than 0.3%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,405 companies declined, 1,836 advanced and 214 remained unchanged. Meanwhile, we welcome our financial expert, Mr. Aman Agarwal, to the show.
और सरबजीत, आगे बढ़ने से पहले रुपए का हाल भी जान लेते हैं. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 10 पैसे कमजोर होकर अब तक के सबसे निचले स्तर 89.55 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर आ गया. दुनिया की 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक अंतर दिवसीय कारोबार में समाचार तैयार किए जाने तक 99.24 पर था.
और अमरीश जी, मैं देख पा रही हूँ कि पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से. राकेश जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछें.
नमस्कार जी, मार्केट मंत्रा टीम को नमस्कार.
जी नमस्कार.
सर, मेरा प्रश्न विल के बारे में है. जैसे किसी का बैंक अकाउंट और प्रॉपर्टी के विल उन्होंने किए लेकिन रजिस्टर नहीं कराई, तो क्योंकि वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो वहाँ जा सकें, वहाँ रजिस्टर ऑफिस में रजिस्टर करवा सकें, तो क्या प्लेन पेपर पे भी विल वो मानी जाती है? रजिस्टर कराना जरूरी है. अगर वो नहीं जा सकते तो क्या और कोई प्रोसीजर है रजिस्टर कराने का विल को?
हाँ जी बिल्कुल. इसमें जो विल होती है, पहली बात तो अगर कोरे कागज पे भी लिखी गई हो और उनके हस्ताक्षर हों, उसके अलावा दो विटनेसेस जो विल के अंदर रिलेटेड हैं उनके ना छोड़ के किसी और दो के हस्ताक्षर हों उसी समय पे जब उन्होंने विल लिखी हो, तो विल वैलिड होती है. अगर नहीं भी हो तो वैलिड होती है. दूसरी बात, रजिस्ट्रेशन हर स्टेट में अब मैंडेटरी नहीं है. कुछ स्टेट्स में उन्होंने अभी पुराना जो रूल था उसमें कर रखा है, बट इसमें सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि इसमें विल रजिस्टर्ड होना मैंडेटरी नहीं है. तीसरी चीज़ ये है कि अगर आप किसी वजह से आप स्थिति में नहीं है कि आप जाके रजिस्टर ऑफिस में रजिस्टर करा सकें, तो वहाँ पे एक अर्जी दी जा सकती है जिसमें रजिस्टर ऑफिस आपके वहाँ पे आके जहाँ पे भी आप हैं वहाँ पे उस विल को रजिस्टर कर सकता है. एक ये प्राविधान भारत सरकार के अंदर लॉ के अंदर है, तो उसको भी आप निश्चित तरीके से कर सकते हैं. पर वैसे जैसे अभी काफ़ी सारे केसेस आए हैं जहाँ पे लोगों ने रजिस्टर विल करने के बाद में उन्होंने कहा कि हम उन्होंने अपनी विल चेंज करी, तो उस केस में रजिस्ट्रेशन. जहाँ तक बैंक की बात है, जहाँ तक हो सके अपना नॉमिनेशन आप बैंक में, चाहे वो खाता हो या लॉकर हो या कोई ऐसी और सुविधा हो, उसमें कराएं, तो उसमें उस चीज़ का जो भुगतान है लोगों तक पहुँच मिल सकेगा.
जी, और चलते हैं हम अगले श्रोता की ओर. गाजियाबाद से जय कुमार लाइन पे हैं. जय कुमार नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं?
मार्केट मंत्रा टीम को मेरा नमस्कार.
नमस्कार जी, सवाल पूछे.
जनरली गवर्नमेंट या सेबी जो भी रूल बनाती है सभी के बेनिफिट के लिए बनाती है, लेकिन अभी ये नोटिस में आया है कि बायबैक जो स्कीम है उस स्कीम से सारे के सारे लोग बेनिफिट नहीं ले पा रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, जो 30% की लिमिट में है उनको तो लॉस होता है, और जो 5 लाख तक इनकी इसकी इनकम है, उनको बहुत प्रॉफिट हो रहा है। तो ये जो डिफरेंस है, क्या आप इस गवर्नमेंट को याद दिलाएंगे कि ये डिस्पैरिटी जो है खत्म करनी चाहिए?
देखिए, जो बायबैक होता है किसी भी शेयर का, वो किसी के ऊपर जोर दबाव डाल के नहीं किया जाता है। ये बायबैक की स्कीम लॉन्च की जाती है, चाहे वो कंपनी हो, चाहे सरकारी हो, चाहे प्राइवेट हो, और उसमें वो जो बायबैक करते हैं, जो करना चाहते हैं, उसका भुगतान वो अपना शेयर दे सकते हैं और वो कंपनी उसको खरीदती है। अब जो भी रेशियो में वो दिया जाता है, उसमें उसको उनको भुगतान का उसका पैसा मिलता है। तो इसमें ये कहना कि किसी को नुकसान होगा या फायदा होगा, अब वो किस इनकम टैक्स लैब में पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से उनको थोड़ा नुकसान फायदा हो सकता है, पर इसमें कोई ऐसा नुकसान फायदे का डायरेक्ट नहीं रिलेशनशिप है।
ओके, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट कॉलर फ्रॉम दिल्ली, अमित झा जी, अपना सवाल पूछे।
जी नमस्कार सभी को। सर से मेरा प्रश्न ये है सर कि जैसे हम गोल्ड ETF, सिल्वर ETF प्राइस देखते हैं, तो कंपेयर टू जो फिजिकल मार्केट में, लाइक मान लो MCX में अगर सिल्वर 1.1% अगर प्लस है मान लीजिए MCX या फिजिकल मार्केट में, तो गोल्ड ETF के जो शेयर्स के जो प्राइस होते हैं सर, वो मोस्टली 5-10% के बीच प्लस रहता है। ऐसा मतलब डिफरेंस इतना क्यों है? दूसरी चीज सर, सेम चीज अगर हम निफ्टी ETF की बात करें तो निफ्टी के कंपैरिजन में इक्वल चलता है बिल्कुल। जैसे मान लीजिए निफ्टी अगर 0.5% प्लस है तो निफ्टी ETF भी 0.5% प्लस होता है, लेकिन गोल्ड और सिल्वर में 5-10% डिफरेंस होता है सर, ऐसा क्यों है सर? धन्यवाद सर।
देखिए ये दोनों ही चीज पदार्थ जो है अलग पदार्थ है, गोल्ड हो या सिल्वर हो, और जो एक्चुअल वो है, और फिर या तो फॉरवर्ड्स लें या ETFs लें, सबकी प्राइसिंग में फ़र्क पड़ता है खरीदार और बेच वालों के ऊपर। जो उसको खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, किस वजह से खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, इनकी वजह से प्राइसेस में डिफरेंसेस आते हैं। हम ये कहें कि सिल्वर ही है तो सिल्वर एक टाइप का है, दूसरे टाइप का है, उसका क्या कोटिंग की जा रही है, दोनों की प्राइसिंग कभी भी एक जैसी आपको नहीं मिलेगी किसी भी शेयर मार्केट में, उसी शेयर मार्केट के अंदर हो या एक शेयर मार्केट से दूसरी शेयर मार्केट को देखें।
और हमारे श्रोता HS अरोरा जी लाइन पे हैं। अरोरा जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं।
हेलो
जी अरोरा जी, सवाल पूछें।
नमस्कार जी, मेरा सवाल सर गोल्ड और सिल्वर को लेकर है कि गोल्ड और सिल्वर ETF में इन्वेस्ट कर रहा हूं मैं, तो एक तो जो मार्केट में खबर्स आ रही हैं कि जी गोल्ड जो है 2.5 लाख पे और चांदी 4 लाख रुपए बहुत जल्दी जाने वाली है, क्या ऐसा कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से लगता है कि इतना राइज हो सकता है विद इन अ ईयर और टू?
देखिए जी, आप ट्रेड कर रहे हैं, ETFs पे ट्रेड कर रहे हैं, आपको ज़्यादा इसके ऊपर पता होगा बिकॉज आप काफ़ी समय से ट्रेड कर रहे हैं। बट कोई भी पदार्थ इतनी तेजी से नहीं बढ़ती है, पहले अटकलें थी बढ़ी और अभी भी बढ़ी ही है, पर जैसे दिसंबर का एंड क्लोजिंग आएगा तो हमें थोड़ा गिरावट देखने को मिल सकती है, बिकॉज अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज जो होती हैं वो इन पदार्थों को होल्ड करती हैं, वो बेचती हैं प्रॉफिट बुकिंग करके अपने बैलेंस शीट्स को अच्छा दिखाने के लिए। पर क्योंकि ये महीने जो होते हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी तक शादियां होती हैं और त्यौहार होते हैं और सभी धर्मों में होते हैं हिंदुस्तान में, तो इसलिए इस समय खरीदारी इनकी ज़्यादा तीव्रता पर रहती है और इसलिए हमें तेज़ी से मार्केट में रेट बढ़ते नज़र आते हैं। एक कारण ये भी है कि जब रुपया गिरता है तो भी इससे थोड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि हमारा जो गोल्ड की प्राइसिंग होती है या सिल्वर की प्राइसिंग होती है, ये लंदन स्टॉक एक्सचेंज से प्राइसिंग हम लेके चलते हैं, तो जब वो कन्वर्ट करते हैं तो फिर हमें थोड़ा महंगे में देखने को मिलता है।
और चलते हैं आगे की खबरों की ओर, एशियाई बाजारों का हाल जान लेते हैं। एशिया के अधिकांश शेयर बाजारों में आज मिला जुला रुख रहा। हांगकांग शेयर बाजार का हैंगसेंग इंडेक्स लगभग 0.7% बढ़ा और चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में बढ़त 0.6% से अधिक रही। सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स में मामूली बढ़त दिखाई दी। दूसरी ओर जापान का निकेई 1.9% गिरा, जबकि दक्षिण कोरिया के कोस्पी इंडेक्स में गिरावट 0.2% की रही। इस बीच दक्षिण कोरिया के वित्त मंत्रालय ने कहा है कि कोस्पी के शेयरों में कारोबार पर अगले वर्ष की शुरुआत से 0.05% का नया कारोबार शुल्क लगाया जाएगा। बेंचमार्क बाजारों पर इस तरह का शुल्क पहली बार लगाया गया है। और यूरोप के प्रमुख शेयर बाजार आज गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। अंतिम समाचार मिलने तक जर्मनी का डैक्स 1.4% से अधिक की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। दूसरी ओर फ्रांस के कैक में 0.8% और लंदन के फुटसी में 0.1% की गिरावट चल रही थी। अमन जी, आप क्या कहना चाहेंगे एशिया के शेयर बाजारों का जो आज हाल हमने देखा?
देखिए जी, मेरे विचार में मिला जुला रुख देखने को मिल रहा हो, चाहे हिंदुस्तान के मार्केट है या एशिया के बाजार देखने को चल रहे हैं। कोई भी बहुत तीव्रता से बढ़ नहीं रहा है या घट रहा है। एक कारण ये भी है कि क्योंकि मैंने जैसे बताया अभी क्लोजिंग की तरफ हम जा रहे हैं, तो काफ़ी सारी कंपनीज जो होती हैं अपने जो फाइनल ईयर कैलेंडर ईयर, बिकॉज हिंदुस्तान में तो हम चलते हैं 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, पर ज़्यादातर एशिया में या इवन यूरोप के अंदर और यूएस में वो कैलेंडर ईयर को लेकर चलते हैं, जनवरी से दिसंबर।
जी जी।
तो दिसंबर में क्योंकि उनको क्लोजिंग करनी होती है, चीज़ें करनी होती है, तो अपने बैलेंस शीट्स को अच्छा करने के लिए वो ज़्यादातर कंपनीज जो है क्लोजिंग, इवन ट्रेडर्स क्लोजिंग की तरफ लेके जाते हैं।
आइए चले अपने नेक्स्ट कॉलर के पास, रमेश जी दिल्ली से। रमेश जी अपना सवाल पूछे।
हेलो
जी।
हेलो
जी, सवाल पूछिए।
हेलो
रमेश जी,
आपको मेरी आवाज आ रही है?
जी, आपकी आवाज आ रही है, आप सवाल पूछिए।
सर नमस्कार। सर जी, मेरे एक छोटा सा क्वेश्चन है रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट के बारे में। सर सर 1990 में मैंने 45,000 रुपए लगाया था एनएसएस के अंदर। सर जी मैंने
जी,
तो सर वो अब मैं पोस्ट ऑफिस में इस बार एंट्री कर रहा हूँ इंटरेस्ट की। सर वो कहते हैं हमने गवर्नमेंट स्कीम बंद कर दी है 1 अक्टूबर 2024 से, इस पर ब्याज नहीं मिलेगा आपको, तो आप पैसे विड्रॉ कर लीजिए। सर जी मैं अगर विड्रॉ करता हूँ सर, क्या इसमें मेरे ये सारी इनकम टैक्सेबल बन जाएगी सर, टैक्स इंक्लूडिंग मेरा प्रिंसिपल और मेरा इंटरेस्ट?
नहीं, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पाई। आपने जो पैसा लगाया है वो अब ट्रस्ट का फंड है या आपका अपना पर्सनल फंड है, ये क्लैरिटी नहीं आ पाई है। पर अगर आप पैसा लगाते हैं, जो अगर आपने शेयर मार्केट में पैसा लगाया है, तो अगर वो आपने छोटे समय के लिए रखा है तो शॉर्ट टर्म टैक्सेस लगते हैं, अगर आपने लॉन्ग समय के लिए रखा है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस लगते हैं और वो निर्धारित होते हैं। मेरे विचार में आप किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को कंसल्ट करें, वो आपको ठीक ढंग से बता पाएंगे कितना आपके ऊपर शुल्क लगेगा, लगेगा भी या नहीं लगेगा, बिकॉज कुछ रेंज तक कोई टैक्सेशन नहीं भी है, आपको गेंस देने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसमें प्रावधान ये भी होते हैं कि कैपिटल गेंस अगर आप री इन्वेस्ट करते हैं तो भी आपको कुछ बचत हो सकती है।
जी, और दिल्ली से हमारे श्रोता राजेंद्र लाइन पे हैं। राजेंद्र नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं।
मेरे पास एसआर ऑयल के फिजिकल फॉर्म में कुछ शेयर्स हैं, ये कंपनी डीलिस्ट हो गई थी 2 साल पहले, अब ये डीमैट में नहीं हो पा रहे हैं, अब गूगल पे इसका नया नाम नियारा एनर्जी आ गया है और वहां पे उसकी प्राइस भी आ रही है, अब ये शेयर किस तरह से बेचे जा सकते हैं?
देखिए जी, पहले तो ये आपको कंपनी में ही जाके चेंज करवाने होंगे नई कंपनी के नाम पे, और फिर वहीं से जब वो नए कंपनी के नाम पे शेयर मिलेंगे तो आपको वो डीलिस्टेड शेयर्स की फॉर्म में मिलेंगे। अब ये कंपनी आपको चेंज करके देगी या नहीं देगी उसका भी प्रावधान चेक करना होगा, बिकॉज जो कन्वर्जन का प्रोसेस था वो बहुत समय पहले खत्म हो चुका है। पर अभी भी कुछ कंपनीज हैं, कुछ ट्रेडर्स हैं जो इस कार्य में कुछ मुनाफा अपना लेके आपको कन्वर्ट कराने को तैयार होते हैं, तो आप अगर कोशिश करें तो ये, पर डायरेक्टली अगर कंपनी को अप्रोच किया जाए और आपके रीच में हो जहां कंपनी का हेड ऑफिस है, तो वो बेस्ट ऑप्शन रहेगा।
ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट बिग स्टोरी ऑफ द डे, इंडियाज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोथ एज मेजर्ड बाय द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP रोज 0.4% इन अक्टूबर, ईजिंग शार्पली फ्रॉम 4.6% इन सितंबर दिस ईयर। The slow growth in the month could be attributed to less number of working days because of a number of festivals in the month. Meanwhile, the IIP growth rate has been upwardly revised to 4.6% for September this year. According to the data released by the Ministry of Statistics and Program Implementation, among the three major components of IIP, electricity declined 6.9%, mining as well as manufacturing both dipped 1.8% each. Aman, how long do you expect this dip in the IIP to last, and what indicators should we watch for signs of recovery?
No, I think there has been some substantial dip which has been observed. I do not expect that to be there given the growth rate which we are observing in this country today and the fact that everything is positive. However, there is one factor which is seeming to be positive, which is called inflation, which has dipped extensively down. You know, we normally in economics say inflation is a necessary evil. It's like our blood pressure. We must have a certain level of pressure. Currently, it is much below the expected pressure for a developing economy. And that is something which is has a killing effect on almost all factors of growth of production. And IPP is also one of them, because people would then, you know, not go about spending in that level. And that's what we come to know from the inflation figures as well.
और चलते हैं अगली खबर की ओर. सकल वस्तु और सेवा कर जीएसटी संग्रह पिछले महीने नवंबर 2024 की तुलना में 0.7% बढ़कर 1,70,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया. पिछले वर्ष इसी महीने में कुल सकल जीएसटी राजस्व 1,69,000 करोड़ रुपए था. अक्टूबर में केंद्रीय जीएसटी संग्रह 34,843 करोड़ रुपए और राज्य जीएसटी 42,522 करोड़ रुपए रहा. एकीकृत आईजीएसटी संग्रह 92,910 करोड़ रुपए और उपकर 4,006 करोड़ रुपए रहा. अमन, आप क्या कहेंगे, बहुत ही उत्साहवर्धक खबर है जिस तरह का संकलन हुआ है. आप किस तरह से इसको विश्लेषण
करते हैं? मेरे विचार में जीएसटी कलेक्शन शुरुआत से काफी अच्छी रही है और पिछले कुछ महीनों में, खासकर 6 महीनों में, काफ़ी अच्छी कलेक्शन रही है. और इसको मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार ने भी काफ़ी अच्छे कदम उठाए हैं, जिसमें जो जीएसटी है रिडक्शन, मेजर रिडक्शन जिसे हम कहेंगे, बम्पर रिडक्शन किया है एक आम आदमी को, उपभोक्ता को. और रैशनलाइजेशन भी जिसे कहते हैं, मतलब जो पहले 4 स्तर थे उससे उठा के 2 स्तर पे लेके आए हैं और हो सकता है आगे जाके 1 स्तर पे भी हम देख रहे हैं उस चीज को. पर ये एक बहुत बड़ा चुनौती थी भारत सरकार के लिए और उसको उन्होंने उपदंड किया है. और भी कुछ कदम उठाए जा सकते हैं और भारत सरकार मेरे ख्याल में सक्षम है किस तरीके से वो कदम को ला के कुछ चीजें जो अभी भी जीएसटी से बाहर है उनको ला के किस तरीके से एक आम आदमी को राहत दे सकती है.
सो यू थिंक दैट दिस सिंप्लीफिकेशन लीड्स टू सेल्फ कंप्लायंस?
I would not say simplification leads to self-compliance, but then it does lead to more productivity and growth and increase in consumption spending, because people are left with more money in their hands.
All
and
right.
Then everyone has a budget that I'm wanting to spend X amount of money on my livelihood or my education or the things. And that budget, since you have more space, gives space either for savings or for spending more and having a better life of living, you know, better standard of living.
All right, let's connect with our next caller from Delhi. Anil ji, apna sawal poochhe.
Namaskar.
जी सर, अपना सवाल पूछें.
अनिल जी नमस्कार.
जी आपकी आवाज कट रही है.
अब आ रही है थोड़ा?
हाँ जी, पूछिए सवाल पूछिए.
मैं टैक्सेशन में प्रोग्रेसिव टैक्सेशन और रिग्रेसिव टैक्सेशन जो होती है
जी,
उसमें मैं कहना चाहता हूँ. प्रोग्रेसिव टैक्सेशन तो सुना है कि रिच फ्रॉम द रिच वी टेक मोर एंड फ्रॉम द पुअर वी टेक लेस, लेकिन जो रिग्रेसिव जो है टैक्सेशन वो इन प्रैक्टिस कहाँ तक वो एप्लीकेबल है, आजकल कितना उसकी यूटिलिटी है, रेलेवेंस है उसका, ये बताइए.
देखिए जी, हिंदुस्तान में प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का ही स्ट्रक्चर रहा है, जिसमें स्लैब रेट्स होते हैं, जिसमें हम ज़्यादा टैक्स लेते हैं जो ज़्यादा कमा रहा है, जो कम कमा रहा है उसे कम टैक्स लेते हैं, उसे प्रोग्रेसिव कहते हैं. और जो स्टेबल एक होता है कि एक फ्लैट टैक्सेशन सिस्टम लिया जाता है. कुछ देश हैं विश्व में जहाँ पे कहते हैं कि सिर्फ 10%, चाहे 10%, चाहे आदमी गरीब हो या अमीर हो, उसमें सबसे एक ही % टैक्स लिया जा रहा है. तो वो जो टैक्सेशन सिस्टम है वो लागू नहीं होता है हिंदुस्तान में, बट जो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है वही रहता है. उसमें अब भारत सरकार में 2 टैक्स रिजीम चल रही हैं इस समय एक पर्सनल टैक्सेशन के हिसाब से. एक है जो ओल्ड टैक्स रिजीम है, जिसमें कुछ टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं, सब्सिडीज मिलती हैं, रिलीफ मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें प्रावधान पहले से चलते हैं वो दिए जा रहे हैं. उनको कुछ को हटा के कुछ अभी भी रखे गए हैं नए टैक्सेशन में, जो पोर्टफोलियो अप्रोच है, जहां पे सरकार का मापदंड है कि वो किस तरीके से आदमी सेविंग से हटके, क्योंकि पहले जो टैक्सेशन था वो सारा सेविंग से, कितना हम सेव करते हैं, कितना बचत करते हैं, उसके ऊपर प्रभावित था. इस पे है कि हम कितना हम खर्च करना चाहते हैं, कितना हमारे पास पैसा रहता है. तो ये नहीं कि आप सेविंग जबरदस्ती करें, चाहे वो इंश्योरेंस पॉलिसी में हो, चाहे वो आपकी PPF में हो, चाहे किसी में भी हो. इसको देखते हुए उन्होंने नया टैक्स सिस्टम निकाला और उसमें वो रिलीफ भी काफी दे रहे हैं. 12 लाख तक आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ती है.
और दिल्ली से हमारे श्रोता नितिन लाइन पे हैं. नितिन नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं.
नमस्कार सर.
नमस्कार
सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हमने सरकारी बैंक से अपना फंड निकाल के एक प्राइवेट बैंक के उसमें एफडी में लगा दिया है। लगभग एक ही बैंक में हमने 35 लाख रुपए फंड में लगा दिया। क्या ये हमने ठीक किया, एक ही बैंक में लगाना ठीक उचित है? क्योंकि उसमें ये अपना इंटरेस्ट ज्यादा था, इसलिए हमने उसमें ट्रांसफर किया। और दूसरी सवाल ये है कि जैसे आप ये बताते हैं कि शेयर मार्केट में जाने के लिए कुछ इसके लिए कुछ और बैंकों में भी कोई प्रावधान है क्या कि उनसे जानकारी मिले?
देखिए जी, पहली बात तो ये है कि चाहे आप सरकारी बैंक में पैसा रखें या प्राइवेट बैंक में पैसा रखें, आपका जो सिक्योरिटी है जो भारत सरकार ने निर्धारित की रही है वो 5 लाख तक है, जो आरबीआई के थ्रू आती है। मतलब 5 लाख तक आपका पैसा 100% सिक्योर है, उसके ऊपर जो है वो आपको सिक्योर नहीं माना जाता है। जैसे जैसे लिक्विडिट होगा बैंक, उस हिसाब से दिया जाएगा। जहां तक ये सिक्योरिटी की बात है, अब देखने की बात यह है कि बैंकिंग प्रणाली हिंदुस्तान में पूरी तरह सेफ है। आज तक कोई भी बैंक ऐसा फेल नहीं हुआ, बंद हुए हैं, कुछ प्रॉब्लम भी आई है कुछ बैंकों में, पर आज तक किसी भी निवेशकर का पैसा कभी भी खराब नहीं हुआ है। तो इसलिए ये सोचना कि कहीं चला जाएगा, गलत धारणा रहेगी। जहां तक डाइवर्सिफिकेशन की बात है, उसमें बेटर रहता है कि अगर आप प्राइवेट में भी जा रहे हैं तो उनको 3-4-5 बैंकों में कर दें, तो उससे क्या होगा कि वो आपको हर एक बैंक खाते के ऊपर 5-5 लाख की आपको एक सिक्योरिटी मिलेगी। तो अगर 35 हैं और काफी सारे प्राइवेट बैंक अच्छे रेट्स दे रहे हैं, 4 या 5 में करते हैं तो आपको ज्यादा सिक्योरिटी मिल जाती है, उस तरीके से आपका फंड जो है थोड़ा सिक्योर रहता है।
President Draupadi Murmu today said that India is on course not just for economic independence, but expanding its economic role at the global stage. She said this while addressing the convocation ceremony of the Footwear Design and Development Institute in New Delhi. The President noted that the footwear industry is playing a key role in boosting the economy.
और यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई ने पिछले महीने 1,900 करोड़ रुपए लेनदेन का आंकड़ा पार किया। यह पिछले वर्ष की तुलना में लेनदेन की संख्या में 32% की साल दर साल वृद्धि को दर्शाता है। इसके अलावा लेनदेन के मूल्य में 22% की वार्षिक वृद्धि भी दर्ज की गई।
Global crude oil prices rose today. Brent crude was trading almost 1.2% up at $63.10 per barrel, while WTI crude was trading nearly 1.2% up at $59.24 per barrel when reports last came in. And in the Indian bullion market, 24-carat gold was trading almost 1.1% up at 1,31,050 rupees per 10 grams, and silver was trading nearly 2% up at 1,78,500 rupees per kilogram a short while ago.
और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अंतिम समाचार मिलने तक दिसंबर अनुबंध वाला सोना 0.9% से अधिक की बढ़त के साथ 1,28,080 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था। दिसंबर अनुबंध वाली चांदी 1.6% से अधिक की बढ़त के साथ 1,74,456 रुपए प्रति किलो पर कारोबार कर रही थी। अमन, आप क्या कहना चाहेंगे सोने और चांदी में जिस तरह की बढ़त लगातार हम देख रहे हैं?
देखिए, मेरे विचार में अभी भी ये थोड़ा स्टेबल रहेगा, पर दिसंबर के एंड में जैसे मैंने पहले कहा, थोड़ा गिरावट देखने को मिल सकती है, फिर वापस इसी स्तर पे अगले जनवरी या फरवरी में रहेगा, क्योंकि जो है वहाँ पे हिंदुस्तान में जैसे मैंने पहले बताया शादियों और त्योहारों का समय है, और इस समय लोग पैसा खर्च करके ये गोल्ड खरीदते हैं और सिल्वर खरीदते हैं।
जी,
सो गोल्ड हैज बीन यू नो बीइंग परचेज्ड नॉट ओनली फॉर कंजम्पशन बट आल्सो एज एन इन्वेस्टमेंट टू।
यस, एंड मोस्ट राइज व्हिच हैज हैपेंड लेटली इन इंडिया फॉर द लास्ट 2 इयर्स इन पर्टिकुलर इज बिकॉज दैट आरबीआई हैज बीन बाइंग गोल्ड एक्सटेंसिवली, व्हिच इज अ रेयर अकरेंस इन द पास्ट इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया। मेनी सेंट्रल बैंक्स अक्रॉस द ग्लोब बाय गोल्ड एज अ सिक्योरिटी एंड इंडिया हैज बीन बाइंग बट वेरी लिटिल इन द पास्ट, बट फॉर लास्ट 2 इयर्स इन पर्टिकुलर वी हैव बॉट मोर गोल्ड देन व्हाट वी हैव बॉट इन द लास्ट सो मेनी डेकेड्स।
और चलते हैं कार्यक्रम की समाप्ति की ओर। अमन जी, इस कार्यक्रम में भाग लेने और प्रमुख खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार।
बिफोर वी क्लोज, अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस। बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस क्लोज वीक्स फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन विद लॉसेस। सेंसेक्स डिप 65 पॉइंट्स, निफ्टी एंड्स बिलो 26,200। मोस्ट एशियन स्टॉक मार्केट्स एंड मिक्स्ड एंड ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस राइज ओवर 1%। And that's it in today's edition of Market Mantra. See you tomorrow. Goodbye.
Namaskar.
इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।